राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7 अगस्त 1992 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथानिया में हुआ। राम।
पराकृत नवनिबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए परमात्मा में श्रद्धा और प्रेम चाहिए, क्योंकि वे स्वयं अपनी तरफ से कृपा करते हैं। भगवान ने कहा कि सूर्यं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति, संपूर्ण प्राणियों का मैं सूर्य हूं ऐसे जाने तो उसको शांति मिलती है। तो जैसे भगवान सूर्य है वैसे संत महात्मा भी सूर्य हैं। सूर्य सर्वदेही नाम, सर्वभूता नाम कह दो चाहे सर्वदेही नाम कह दो, सूर्य सर्वभूता नाम वहां कहते सूर्य सर्वदेही नाम, सब देहियों की वो सूर्य है। सूर्य का मतलब क्या है कि दूसरे आदि माने न माने, जाने न जाने, प्रेम करे न करे, परंतु वे अपनी तरफ से कृपा ही करते रहते हैं। तो भगवान की प्रत्येक जो प्रवृत्ति है, विधान की जो वृत्ति है, उसमें मात्र जीवों का कल्याण है। ऐसी संत महात्माओं की वृत्ति है, बर्ताव है, उसमें सबका कल्याण स्वतः सिद्ध है। जो आदमी अपना स्वार्थ रखता है, अपना कुछ पाना चाहता है, लेना चाहता है, वो कृपा नहीं कर सकता, वो सुनिश्चित नहीं कर सकता। मित्रता अलगत कुछ कर सकता है कुछ अंश में, सर्वथा नहीं। परंतु जो कुछ भी नहीं चाहते तो भगवान है, उनको कोई चाहना नहीं है, गर्ज नहीं है। लोग उनको पूजे न पूजे, माने न माने, यहां तक है कि भगवान को मानते ही नहीं, भगवान का ही खंडन करते हैं, भगवान है ही नहीं, संसार में कोई भगवान नहीं है। ऐसे करने वालों पर भी भगवान की कृपा रहती है, स्नेह रहता है। वे जाने न जाने परंतु भगवान तो जानते हैं ना। ऐसे संत महात्माओं को हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, आप और आपके सेवक बिना हेतु कृपा करने वाले होते हैं स्वाभाविक, चाहे माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, उन पर सब कृपा उनकी रहती है। भगवान की भाई कृपा एक बहुत विलक्षण कृपा है, वैसी मनुष्य में नहीं होती, एक विलक्षण अलौकिक कृपा है। और संत महात्माओं की कृपा भी अलौकिक होती है, परंतु भगवान की कृपा में और विलक्षणता है, बहुत विचित्रता है। कोई पहचाने न पहचाने, तो कृपा तो भगवान की सब पर होती है, परंतु प्रेम अपनी तरफ से सब पर होता है। परम प्रेम में मुख्यता जीव की है, क्यों? परमात्मा प्रेम तो स्वतः है, जैसे अपने शरीर पर अपने हित करने का भाव स्वाभाविक रहता है, ऐसे मात्र दुनिया के प्रति भगवान की कृपा और प्रेम स्वाभाविक रहता है, वो करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक होता है। तो फिर भी उनकी कृपा बड़ी अलौकिक होती है, विलक्षण होती है। वे उनकी तरफ देखते नहीं, अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ऐसे भगवान देखते नहीं, अपनी तरफ से कृपा करते हैं। एक बात याद आ गई, राज के नौकर होते हैं, वे सब के सब राज का ही काम करते हैं, और इनकम टैक्स के होते हैं, थानेदार होते हैं, वो राज में पैसा बहुत करते हैं, और दूसरे काम करने वाले व्यापार करने वाले भी पैसा करते हैं। परंतु फौज विभाग होता है ना, इसमें खर्चा तो बहुत ज्यादा है, पैदा नहीं होती, राज के इतनी पैदा नहीं होती। भगत पर लड़ाई रहेगी हो तो काम करते हैं, तो वो खर्चा ही करते हैं। ऐसे भगवान के सब भगत होते हैं, भगवान करते हैं, काम करते हैं, भगवान भी उनकी कृपा करते हैं, वे भी करते हैं। परंतु ये नरकों का स्थान है ना, इसमें भगवान खर्चा ही खर्चा लगता है, पैदा नहीं होती। कौन कृपा करे, कौन पैदा करे, हुआ तो महान पापी पापी इकट्ठे होते हैं। बहुत ज्यादा पापी होते तो उनको नर्क मिलता है, तो खर्चा तो मिलता है। जैसे कैद खाने में खर्चा ज्यादा होता है, पर उनमें भी दो है, फौजदारी और दीवानी होती है। उस दीवानी में जो कैद में जाता है उसका खर्चा तो जिसने कर्जा लिया उसको देना पड़ता है, और फौजदारी में तो खर्चा सब सरकार का ही होता है। ऐसे वो नरक स्थान है, वो तो फौजदारी का ही मुकदमा है, वहां मन पाप किया है, अन्याय किया है, उसका दंड मिलता है। तो ऐसे कैद खाने में जो अन्याय करने वालों को दंड दिया जाता है, कैद की जाती है, उनमें सरकार कुछ पैदा करवा ले तो करवा लो, वे पैदा करने वाले नहीं है, तो सरकार में तो कुछ पैदा करवा लेते हैं, परंतु उन कैद खाने जो नरक है, उस नरक से भगवान के पैदा नहीं होती। ना कोई प्रेम करता है, ना कोई वहाँ कृपा समझता है भगवान की, ना भगवान के भजन करते, ना भगवान को याद करते हैं। अगर भगवान को याद करते तो वहाँ जाते ही क्यों नरक? नरक में दुख पाते हुए जीवों को जमराज कहते हैं, न त्वया अर्जितो देवा केशव क्लेश नाशन, तुमने कभी क्लेशों का नाश करने वाले भगवान का भजन नहीं किया। अरे तुम यहाँ आए हो तो क्यों आए? भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के सम्मुख नहीं हुए, विमुख ही विमुख हुए, उनको वो दंड मिलता है। परंतु उन पर भगवान की कृपा है, कृपा देखी जाए तो उन पर ज्यादा है। दूसरे तो कुछ सन्मुख होते हैं तब कृपा करते हैं, वो दया करते हैं, वो विमुख होते हैं उन पर भी कृपा करते हैं भगवान, विशेषता से कृपा करते हैं। भगवान जो अनुकूलता भेजते हैं, अनुकूलता में भगवान की दया होती है, और प्रकूलता भेजते हैं उसमें भगवान की कृपा होती है। यदि भी दया है, कृपा है, घृणा है, अनुकंपा है, अनुग्रह है, ये शब्द पर्यायवाचक है, परंतु होते हुए भी इन शब्दों में बड़ा अंतर है। तो कृपा किसको कहते हैं और दया? तो जो भगवान अनुकूल परिस्थिति देते हैं उनमें भगवान की दया होती है, और प्रतिकूल परिस्थिति देते उसमें भगवान की कृपा होती है। कहते दया में कृपा में क्या फर्क है भाई, दया है ना, उनको पोषण करते हैं, आराम देते हैं, उसमें दया होती है। और कृपा जो उनके उनके विपरीत उनके मन के इंद्रियों के शरीर के प्रतिकूल करते हैं ना, उसमें भगवान की कृपा होती है। दया में तो जीवों के पुण्यों का नाश होता है, जितना हम सुख भोगते हैं आराम भोगते हैं उसमें हमारे पुण्यों का नाश होता है, और जितने हम दुख भोगते हैं उसमें हमारे पापों का नाश होता है, क्योंकि दुख जितना होता है वो पापों का ही फल है। तो भगवान प्रतिकूलता देते हैं उसमें हमारे पाप क्षय होते हैं, अनुकूलता देते उसमें पुण्य क्षय होते हैं। तो प्रतिकूलता देने में भगवान की कृपा विशेष होती है, अधिक होती है, पुराने पापों का नाश होता है और नए पाप अगाड़ी कम होते हैं। मनुष्य दुख में डरता है, पाप नहीं करता है, देखता है कि इसका फल ये नतीजा हुआ तो पाप करेगा नहीं, तो अगाड़ी पापों का उत्पादन नहीं होता है, कम होता है, और पुराने पापों का नाश तो होता ही है। ऐसी भगवान की कृपा होती है, उस कृपा में जीवों को कष्ट होता है, कष्ट होने पर भी भगवान कष्ट देते हैं, देने पर भी उनमें भगवान की कृपा विशेष है, उनको शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं, पुराने पापों का नाश करते हैं, नए पाप न करे इसके लिए शिक्षा देते हैं। ऐसे भगवान की विशेष कृपा होती है। तो कभी बुखार आ जाए, घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, हमारे को दुख आकर पड़े, घर में कोई मर जाए, बीमारी आ जाए, तो उसमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। सज्जनों ये विशेष ध्यान देने की बात है कि बुखार आता है उसमें हमारे पापों का नाश होता है। एक संत थे सज्जन, उनके किसी प्रेमी ने पत्र लिखा कि भाई हमारे बुखार आ रहा है, हमारे विपत्ति आ गई है, तो आप करो भगवान कृपा करे, बुखार का बीमारी का इलाज करे, भगवान कृपा करे। उस संत ने लिखा कि भाई इलाज का क्या इलाज है, ये इलाज ही तो हो रहा है, पाप रूपी बीमारी का इलाज है, तब इलाज का कोई इलाज होता है, ये तो इलाज हो ही जाए, उसमें इलाज होता हो। अपने भी कभी कभी काम पड़ा है, ऋषि के स्वर्गाश्रम में पहले ये गीता भवन नहीं बना था, उस समय में मामूली कुटिया में वहाँ लोग रहते थे, तो एक दो बिच्छू काट जाते, डंक मार ही देते, रात्रि में बहुत बार शिकार कभी कभी से नहीं आवे तो आते थे, या गीता भवन बनने के बाद वो शिकायत बहुत कम हो गई है, नहीं है भाई, क्यों सफाई रखते हैं अच्छी तरह से, पहले जंगल में कुटियाएं थी तो उसमें बिच्छू आ जाते थे, तो लोग कहते बिच्छू काटते हमारे तो बड़ा दुख हुआ है, ये बिच्छू क्या है, ये पाप रूपी बिना बीमारी को दूर करने के लिए इंजेक्शन है, एक भगवान की शीशी घूमती है ये, जो जिसके लिए पाप होता तत्व हो इसमें लगा देते हैं, जिनसे पापों का नाश होता है, जितना जितना दुख होता है कष्ट होता है उस कष्ट में भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है, अधिक कृपा होती है, पापों का नाश करके शुद्ध करते हैं, रगाड़ी पापों से बचाते हैं। परंतु हर एक आदमी समझता नहीं, बीमारी आती है वो बहुत विलक्षणता से कृपा करते हैं भगवान, बीमारी में कृपा भगवान करते हैं। और बीमारी में सज्जनों एक बात बताओ, ये जो दुख आता है ना मन से विरुद्ध, उसमें अगर मनुष्य सावधान होकर भगवान की कृपा में बच्चे गड़बड़ी करते हैं तो थप्पड़ लगाती है उसके, क्यों रे ऐसा क्यों करता है? तो वो मार देती है बच्चे को, तो बुरा लगता है, बच्चे को तो बुरा लगे कि वो मार है, वो मार तो सही बुरी होती है, परंतु मार में प्यार ज्यादा भरा हुआ है। स्वास्थ्य लिखा है, लालने तारने मातु नाकारुण्यम यथार्भके तद्देव महेश्वर नियंत्र गुण दोष हो। प्यार करने में माँ प्यार करती है, सिर पर हाथ रखती है, भोजन कराती है, सिर पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे, और ले रहे और खा रहे, उसमें तो दया है उसकी, ऐसा दीखता भी है। परंतु जब कभी माँ क्रोध करती है और बच्चे को मारती है, उस समय में पहले गलती की है उसने, उस गलती हुए पाप का प्रायश्चित कर रही है, और अगर ये सावधान है कि ऐसी गलती करेंगे तो फिर मार पड़ेगी भाई, अगर ये गलती न करे, ऐसी शिक्षा उसमें होती है। अगर शिक्षा लेने वाला वो समझ ले कि ये बात ठीक है, तो लालने तारने मातुर माता तारना कर रही है, जिस समय मैं मार रही है, उस समय कोई विचार करे कि भाई माँ मार रही है तो मैं भी थोड़ी सी दो चार मार दूं, क्योंकि माँ को मदद कर दूं, कि तू अकेली तकलीफ देख रही है तो दो चार डंडा मैं भी मार दूं, तो माँ लड़ेगी उससे कि मारता क्यों है, तो तू क्या कर रही है। इस बात से कहावत है कि माँ मारती है पर मारना नहीं देती, आप तो मारपीट करती है पर तो मारना नहीं देगी, जिस समय में मारती होते उस समय में आप जान मारो तो आपसे लड़ाई करेगी, क्यों कि तुम्हारे मारने में वो दया नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो अपनापन नहीं है, और माँ में वो अपनापन है। माँ की क्रिया बाहर से दो होती है परंतु तो भीतर से भाव दो नहीं होते। प्यार करने में मार देने में माँ का हृदय एक होता है, अगर माँ का हृदय दो हो तो जिस समय मारती हो आप भी सहायता करो माँ की, तो अकेली तकलीफ क्यों देखती है, थोड़ी मैं तेरी सहायता कर दूं, मदद कर दूं, तो राजी हो जाएगी कि ठीक है भाई मेरी सहायता करी, मदद करी इतनी, वो नाराज होती है। तो माँ मारती है, मैं मारने नहीं देती। तो ऐसे ही भगवान कृपा करते हैं तो बुखार भेज देते हैं, घाटा लगा जाता है, अपमान हो जाता है, निंदा हो जाती है, हमारे को तकलीफ होती है, परंतु हम किसी को तकलीफ दें तो भगवान राजी नहीं होते, कहते महाराज आप भी तकलीफ देते हम भी देते थोड़ी सी कर दें सहायता। कल्पना करो कि किसी आदमी को राज से सजा मिली, बहुत बड़ा अपराधी था वो, बड़ा अपराधी होने से राज से हुक्म हो गया कि इसको फांसी चला दो, फांसी लगा दो, तो वो जल्दाज फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। किसी आदमी का था बैर, उसने द्वेष था, तो उसने क्या किया उन जल्दाजों से छुड़ा करके और मार दिया। 10 बजकर 10 मिनट पर था तो 10 बजकर 10 मिनट पर उसने गला काट दिया। राज में विचार हुआ तो उसको फांसी होगी फिर कि महाराज उसको तो फांसी आप दे ही रहे थे, अरे मैं फांसी तू देने वाला कौन, तू काटने वाला कौन है, तो उसको दंड होगा। ऐसे भगवान है वो सरकारी जो कानून है उसके अनुसार से वे काम करते हैं, वो काम अगर दूसरा करे तो वे दंड के भागी होते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को मारने वाले हैं उनको भयंकर दंड होगा, ऐसा नहीं कि मरने वाले हैं ही महाराज आप उसको दंड देते हैं, मैं भी दंड दे दूं थोड़ा सा तो मेरे मन की भी निकाल रहा हूँ अच्छी तरह से कि उसने हमारे साथ द्वेष किया है तो वो भी हमारा पैर निकल जाए, अरे आपको दंड देना है ही, कोई उसको कृपा नहीं, दंड देना है आपको, परंतु वो भगवान को स्वीकार नहीं है। तो भगवान के दंड देने में कृपा भरी है, दूसरा उसको मारता है दंड देता है उसमें कृपा नहीं है, उसमें तो संबंध में बैर है। इस वास्ते भगवान उसको दंड देते हैं कि तू इसको क्यों मार रहा है, क्यों नष्ट कर रहा है। सब बैर से स्वार्थ से स्वस्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए वो दूसरों की हत्या करता है, वो कृपा थोड़ी करता है। और एक और बात है, वो भी कृपा करे कि जैसे राज कृपा करते हैं तो हम भी लोगों पर कृपा कर रहे हैं ऐसी कि ना। एक विलक्षण बात है, चोर होता है उसको दंड देने की बात आती है, दंड देने से किसी इतनी बैत लगा दो, बैत लगाते रहते हैं और बैत ज्यादा लगने से घाव हो जाते हैं, तो घाव हो जाने पर कैसे भेजो उसके इलाज करो, वो इलाज करना अस्पताल, उसको भी वो तनख्वाह मिलती है राज से, और उसको मारते हैं उनको भी तनख्वाह मिलती है राज से, राज से प्रबंध है दोनों, पहले मारते हैं फिर घाव ठीक के लिए मलम पट्टी करते हैं। तो मलम पट्टी करने वाला काम तो संत महात्मा लेते हैं, पर मारने वाला काम संत महात्मा नहीं लेते। कंप्यूटर का काम करेंगे पर तो भी मारने का काम नहीं। परित्राणाय साधु ना विनाशाय दुष्कृताम, तो दुष्टों का विनाश करने का काम संत महात्मा नहीं करते। आप देख लो इतिहास में संत महात्मा समझाते हैं, बुझाते हैं, भजन ध्यान कराते हैं, परमात्मा की तरफ लगाते हैं, परंतु दंड नहीं देते कि वे बड़े सिविल सर्जन का काम है, सर्जरी होती है वो बड़े अधिकार की बात है, वो ही कर सकता है। और मलम पट्टी तो कंप्यूटर भी कर दे, साधारण जानने वाला ही कर दे, भाई गाँव ये दवाई लगानी है पट्टी बांधनी कर देते हैं। तो ऐसे कृपा करने का काम तो दूसरे भी करते हैं, परंतु वो काम जो देखिए वो नहीं करते। एक बात याद आ गई, मारवाड़ में अकाल पड़ा हुआ था, घास बिन गायें मर रही थी, घास और पानी मिल नहीं रहा था, बहुत गायें मर गई। उस समय मेरा बम्बई जाने का काम पड़ गया, बहुत पुरानी बात है, अब ये काल इन कालों में नहीं है, पहले की बात है, पुरानी 2000 से पहले की बात होगा, अंदर 2005 की। तो वहाँ अपने सत्संग में सत्संग किया करते हैं और बाहर में भी बैठकर सत्संग किया करते हैं, तो स्टेशन के पास ही वहाँ मैदान में बैठे हुए सत्संग कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई गाय मर रही है, इस वास्ते गायों के लिए आप लोग जो करो, हम चंदा चिट्ठा करना रुपया मांगना ये मेरा काम नहीं रहा, वो है भी नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। अभी इन दिनों में मेरे जाना हुआ बम्बई तो लोग बहुत आने लगे, पहले इतने आदमी आते नहीं थे, तो वे मेरे को सलाह देने लगे कि गायों के लिए आपको काम करता है करना है तो पेटी रख दो जगह जगह पैसों की, वो पेटे डाल दे, और आप धनी आदमियों को इकट्ठे करो और इकट्ठे कर उनसे कहो तो रुपये इकट्ठे हो जाए जिन गायों की रक्षा हो। ये मेरे को सभा में प्रश्न रखा कि ऐसा करो आप जिससे गायों के लिए सहायता हो जाए। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि मैं आपकी धर्म पर और ईश्वर पर श्रद्धा भक्ति बढ़े इस वास्ते आया हूँ, रुपयों पर आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़े, रुपयों को महत्व दूं, इस वास्ते मैं नहीं आया हूँ। क्या हुआ से इसका, मैं अगर ये चंदा चिट्ठा करूं और किसको कह दूं भाई इस तरह से गाय मर रही है, धनी आदि बुलाऊं, पैसे इकट्ठा करूं, उसका अर्थ क्या होगा? गहरी रीति से विचार करने वालों पर अर्थ पड़ेगा, वो कहेंगे भी, साधारण आदमी कह उठेंगे कि रुपयों की गरज तो स्वामी जी को भी है, क्यों रुपया लेते हैं तब गरीबों की सेवा होती है, तो रुपया एक बड़ी महत्व की चीज है, तो ये महत्व बढ़ाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं धर्म पर और भगवान पर श्रद्धा बढ़े, उनका महत्व आके अंकित हो, इस वास्ते आया हूँ। मैं चंदा शिक्षा करने वास्ते नहीं आया हूँ, पैसों वास्ते नहीं आया हूँ। पैसों होने से उल्टा असर पड़ेगा, क्या पैसों हम बढ़िया समझते हैं, स्वामी भी तो बढ़िया ही समझते हैं, तब तो धनी आदमी इकट्ठा करते पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही कलकत्ते में काफी सभा थी लोग से, उन्होंने मेरे को कहा कि आप कोई चंदा चिट्ठा करो तो गायों की रक्षा हो जाए, मुझे चंदा चिट्ठा नहीं करना है। मैं सज्जनों को बात बताने आया हूँ कि भगवान का भजन करो, धर्म का अनुष्ठान करो, इस तरह से करो। पर पैसों का कहेंगे तो ये चंदा चिट्ठा करते हैं, पैसा करते हैं ना, ये लोग तो कहते हैं क्या है पैसे तो हाथों में है, हाथों में नहीं है कलेजरी कोर है। अगर पैसों का कहूँ तो उनके कालजे में छुरी चलाना है, ये कसाई का काम मेरे से नहीं होता भाई। तुम पैसा दो, इतना रुपया दो, इतना दो, ये उनके कालजे में छुरी करना है, ऐसा हत्या का काम मेरे से होता नहीं, मैं नहीं करता हूँ। जहाँ पैसे की आवश्यकता लोग पैसा इकट्ठा करते हैं धर्म के लिए, धर्मार्थम यस्य वित्तेह वरम तस्य निधयेता पक्षाघाति पंकज से दूरा दस वर्षम वरम। धन के धर्म के लिए इकट्ठा करें, धन के इकट्ठा करें, पैसा इकट्ठा करें तो धर्म हो जाएगा, धर्म का अनुष्ठान करेंगे वो धर्म रद्द होता है, क्योंकि पैसे उनसे श्रेष्ठ होते हैं। पैसों के द्वारा धर्म होता है, तो धर्म तो बेटा हुआ और पैसा बाप हुआ, पैसों से धर्म जन्मता है, तो उनके हृदय में असर क्या होगा? असर होगा कि सबसे बढ़िया पैसा है तो पैसा था, पहले मन में हाय पैसा हाय पैसा हाय, दरिद्रता भरी हुई है पहले से ही, फिर वही दरिद्रता मैं बढ़ाऊंगा जिससे तुम्हारे पतन होता है, नरकों में जाते हो, 84 लाख जूनी में जाते हो, भयंकर भयंकर दुख भोगते हो, जिस लोभ के कारण से नरकों का दरवाजा है काम क्रोध लोभ, वो लोभ और उस धन का महत्व बढ़ाऊंगा मैं, तो मैं नरकों में भेजने वाला ही होऊंगा। मैं नरकों में भेजना नहीं चाहता, इस बात से मैं नहीं कहता। एक महेश्वरी ने बम्बई में कहा कि हमारे 1,00,000 रुपया लगाना है गायों की सेवा के लिए, तो मैंने कहा तुम जाओ जहाँ गायों की सेवा होती हो वहाँ जाओ और अपनी आंखों से देखो और हाथों से सेवा करो, तब पुण्य होगा, 1,00,000 रुपया देने से वो पुण्य नहीं होगा। रुपया देने से पुण्य हो जाए, यूं खरीद ले तो हर एक खरीद लेगा पैसे वाले। पुण्य होता है हृदय में नया भाव पैदा हो जाए, कृपा पैदा हो जाए, सबको कैसे सुख हो, इनका दुख कैसे मिटे, ऐसे हृदय द्रवित होता है उसमें दया होती है। रुपया दे दिया, नहीं देने की अपेक्षा अच्छा है, देते ही नहीं उनकी अपेक्षा देना अच्छा है, परंतु आओ तो वो ही 1,00,000 रुपया देने वाले वो लखी है लखपति, वहाँ आया बीकानेर जो सेवा करने गायों की, उन्हें भेजा, वो गया गाँव में घूमा और उन्हें सहायता भी करी, शायद ज्यादा करी होगा मेरे को पूरा पता नहीं, परंतु वो आया। तो आप जाओ स्वयं अपने स्नान करो, सेवा करो, कहते सेवा करेंगे तो सेवा में पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, महान नीचा काम है ये, बड़ा जल्दी का मंगताई का काम। धर्मार्थम यस्य, धर्म के लिए ही जो पैसों को महत्व देते हैं वो भी धर्म को महत्व नहीं है, वो परिणाम में रुपया पर ही महत्व आएगा कि महत्व चीज ही रुपया ही है, रुपये पर महत्व आने से लोभ होगा, लोभ होगा बढ़ेगा जाएगा नरकों में, तो मैं नरकों में भेजने लिया नहीं आया हूँ भाई। अब तुम्हारी पैसों में इतनी महत्व बुद्धि है वो बढ़ जाएगी, पतन होगा तुम्हारा, तुम्हारे धर्म चाहिए तो जाओ तुम करो काम, आप जाओ स्वयं देखो और पुण्य काम करो तो तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो ये बीच में बात याद आ गई, तो वहां मैं सत्संग कर रहा था तो मैंने ऐसी बातें कही, तो एक दो सज्जन खड़े खड़े प्रश्न करने लगे कि महाराज देखो आप साधु काम करते हो, आप ठीक नहीं करते हो, आप गलती करते हो। वो क्यों भाई? कि गलती करते हो, राम जी को अगर गायों को न मारना होता तो घास पैदा कर देते, तो राम जी गऊओं को मार रहे हैं, उस समय में भगवान से विरुद्ध तुम काम करके और गऊओं जियाने के लिए कहते हो कि घास दो तुम जाओ और सेवा करो, तो वो ये भगवान के विरुद्ध बात हुई, तो भगवान का भक्त भगवान के विरुद्ध काम करता है क्या? आप करते हो भगवान से विरुद्ध काम, तो ये भक्तों का काम है, भगवान के अनुकूल चलो, भगवान की जैसे मर्जी है वैसे होने दो, उसे बदल क्यों देते हो आप? ऐसे उसने प्रश्न किया। अक्षर मेरे को याद नहीं है, भाव याद है, ऐसे उसने कहा तुम ठीक नहीं करते हो। मैंने कहा भाई देखो अपनी अपनी बुद्धि से जैसा होता वैसा करता हूँ, मेरी बुद्धि से मैं ठीक कर रहा हूँ, बेठीक नहीं कर रहा हूँ। कैसे बेठीक नहीं कर रहे? भगवान के विधान से विरुद्ध काम कर रहे हो, भगवान तो मारना चाहते हैं आप उनको जिलाना चाहते हो, तो भगवान के कानून से विरुद्ध हुई ना बात। ये पिता है वो लड़के को जन्म देने लगे मारने लगे तो माँ मना करती है। मैंने देखा पिता को आ गया क्रोध, वो लगने लगे मारने को लगे, तो माँ जाकर सामने ऐसी हो गई, तो माँ ने अपने हाथ पर मार खा ली, लड़के के नहीं लग रही थी। अब लड़का भी लड़का बेटा तो बाप का ही है माँ का ही है, दोनों का लड़का है वो, तो उनमें दोनों माँ और बाप ही कृपा करने वाले होते हैं। पर दोनों पर विचार किया हो किया जाए तो माँ मारने नहीं देती है, अपने पर चोट खा लेती है हाथ का, परंतु उसे बच्चे को मारने नहीं देती। तो हम लोग भगवान तो है बाप की तरह और संत महात्मा होते माँ की तरह, तो वो मार नहीं खाने देते, वो उनकी सहायता करते हैं। तो क्या उनसे पति व्रता नहीं रही हो? पति के मन के विरुद्ध काम करती है, बच्चे को मार नहीं देने देती, तो क्या वो पतिव्रता नहीं है? क्या पति के साथ द्वेष करती है वो? क्या पति के मन के विरुद्ध काम कर रही है? पति विरुद्ध नहीं है, वो रक्षा करती है, उससे भी पति राजी होता है परिणाम में कि बहुत अच्छा हुआ, मैंने क्रोध गया ज्यादा चोट लगा देता, कोई गलती हो जाती तो उसे बचाया, तो कभी स्त्री पर नाराज नहीं होते। ऐसे भगवान तो है बाप की तरह और संत महात्मा लोग हैं माँ की तरह, तो वे कृपा करते हैं ऐसे ही, उनकी कृपा होती है इस तरह से ही, अपन भगवान की ऐसे होती है तो इसमें पाप कैसे होगा? अब कहते हैं स्त्री मारती है पाप मारता है, माँ है पति प्रसाद, पति की राजी में राजी, पति के हाँ में हाँ, पति जैसे करे वैसे ही करे, उसी के अनुकूल चले, तो वो भी मारने लगे तो बच्चा का दुख खत्म हो जाएगा, बच्चा कितना दिन चलेगा? माँ भी मारे बाप भी मारेगा तो क्या दशा होगी बच्चे की? तो ऐसा काम भगवान कर सकते हैं, संत महात्मा ऐसा नहीं करते, वो तो रक्षा ही करते हैं उस समय में, और उसकी रक्षा करने से भगवान नाराज नहीं होते। क्या पति नाराज हो जाता है? बच्चे को बचावे मार न पड़ने दे, तो उस समय में तेजी से कहते नहीं क्यों हरी बिड़ती हो लगा दे, ये मानता नहीं है, परंतु माँ तो सहजी महाराज, पर मूल में पिता नाराज नहीं होते कि तुम मेरी जो प्रवृत्ति है मैं जो काम कर रहा हूं तुम सहायता नहीं करती, विघ्न विघ्न डालती हो, ऐसे नाराज नहीं होते। इस तरह से कोई गरीबों की रक्षा करे जीवों की रक्षा करे तो उसमें भगवान नाराज नहीं होते। हमारे भाई समझ में आई, जैसे हम करते हैं आपके समझ, आप करो हमको बताए, आप करो मत ऐसा, पर करो तो हम क्या करें, हमारी समझ तो ये है। तो ऐसे लेने देने में पापों का नाश होता है, परंतु ये काम जरा क्रूर है, ये काम शोभ में नहीं है। जहाँ अपनापन अधिक होता है वहाँ ऐसा काम भी करना पड़ता है, परंतु अपनापन नहीं है वो चाहे जाए नरकों में चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों कुछ चिंता करे अपने, किसी किसी को कहे भाई कौन मानेगा न माने। इस वजह से भगवान की जो कृपा है वो बड़ी विलक्षण है, हमारी जो कृपा होती है, हम चल रहे हैं, जीव कोई जंतु आ गया मार्ग में तड़प रहा है अथवा उसके लग जाए ठोकर, तो उसको बचाने के लिए संत महात्मा सज्जन कृपा करेंगे बचाएंगे, तो बचाने पर भगवान राजी होते हैं। यदि भी उनके पापों का दंड होता है परंतु उसमें अभी संत महात्मा अच्छे दयालु पुरुष रक्षा करने की चेष्टा करते हैं, तो रक्षा करना है ये मनुष्य का धर्म है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तो इस वजह से दया है ये धर्म का मूल है, तो दया करना काम करना है। भगवान की दया है वो बड़ी छिपी हुई है, मैंने एक दिन बताया भी था कि भगवान देते हैं वो भी देने का उनका तरीका ऐसा विलक्षण है कि जिसको जो चीज दी जाए वो अपनी ही मानता है। शरीर दिया वो अपना ही मानता है, इंद्रिया दी, नेत्र दिए, मन दिया, बुद्धि दी, उस बुद्धि को, नेत्रों को वो मानता है मेरे ही हैं, मेरे ही हैं, तो कम मत बन लो, फिर चश्मा क्यों लगाते हो, तुम्हारे नेत्र ठीक कर लो, शरीर तुम्हारा बीमार मत होने दो और कम से कम मरने दो मत, कभी मरने नहीं देंगे क्योंकि हमारा शरीर है, तो आपकी चलेगी, आपका है नहीं, आपका बस चलता नहीं है, वो तो भगवान का है, उनकी मर्जी से होना है वो होगा आपके, नहीं तो आपका है तो बचाओ, कि नहीं भाई बुखार नहीं आने देंगे हम तो सही हमारा है, कि वो तो हमारे हाथ की बात नहीं, तो फिर हमारा कहना गलती की बात है, तो संसार को मेरा कहना, धन को मेरा कहना, परिवार को मेरा कहना, ये तुम्हारी गलती की बात है, तो भगवान का है, पर भगवान के देने की एक चाल है, उनकी एक विलक्षण चाल है कि जिसको दिया जाए वो अपना ही मानता है। दूसरे आदमी कोई देते हैं, सहायता करते हैं, तो कहते हैं तेरी मैंने सहायता करी है, तेरे को अच्छा बनाया है, इतना कर दिया है, मैं तुम्हारी सहायता करी है, पर भगवान कभी एहसान नहीं करते, और अनंत जीवों का पालन करते हैं जिनकी संख्या नहीं कर सकते आप, मनुष्यों की संख्या 2-2.5 अरब 3 अरब कर ले, परंतु जितने जीव जंतु छोटे बड़े 84 लाख जीव, जल सर थल सर नभ सर नाना आकाश बिछरने वाले, पृथ्वी पर बिछरने वाले और जल में रहने वाले जीव, उनकी कितनी जाति है, 84 लाख जाति है, और एक एक जाति में लाखों करोड़ों अरबों जीव होते हैं, अनगिनती के जीव होते हैं, इतने जीवों का सबका पालन करते हैं, परंतु किसी को ये नहीं मालूम देते कि भगवान ने किया, भगवान के देने की एक चाल ही अलग है, विलक्षण चाल है, अलौकिक चाल है, उस कृपा की तरफ आप दृष्टि डालो, उनके प्रेम की तरफ दृष्टि डालो, तो आपको मालूम होगा कि क्या कृपा भगवान की, कैसी विलक्षण कृपा होती है, क्या काम करते हैं। उमा सुराम स्वभाव दिन जाना, ताई भजन तजी भावन आना, भगवान के स्वभाव को जिन्होंने जान लिया है वे भगवान के दास बन जाते हैं। यो माम गुरु जाना थी पुरुषोत्तम, जो असम मूड है, मूड था जिंदगी चली गई, अज्ञान चला गया, अरे पुरुषोत्तम जाना सर सर्वित भजती माम सर्व भावे भाव, वो सब भाव से मेरा भजन करता है, तो भगवान के स्वभाव को कोई जान ले कि भगवान क्या क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो उनको दंड में आनंद आता है, दंड भेजते उसमें भगवान के दंड में भक्तों को आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, घाटा लग जाए तो आनंद आता है, तिरस्कार लगे हो जाए तो आनंद आता है, उनमें बड़ी विलक्षणता होती है, बड़ी विचित्रता होती है। एक धामन गांव में मनकोजी नाम के बोझला, मनकोजी बोझला नाम से बोझला जाति के मनकोजी थे, तो वहां धामन गांव में रहते उपवास करते, और वहां से एकादशी के दिन पंढरपुर जाते, उनका खेती थी, गाय भैंस बहुत, खेती बहुत बढ़िया थी, तो खूब वहां जाकर के ब्राह्मणों को भोजन करते, साधुओं को देते, भिखारियों की सेवा करते, रोटी कपड़ा औषध आदि खूब बांट करते, ऐसे किया करते थे। महाराज ये देवी चक्र विलक्षण है, ऐसे करते करते उनकी भी गरीबी आ गई, खेती चली गई, गाय भैंस मर गई, बड़ी मुश्किल से उसकी जीविका चलने लगी, जीविका चलने लगी, तो भी वो पंढरपुर जाते ठाकुर जी के, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ने ऐसा किया भजन नहीं करेंगे, भजन वैसे उसके वैसे ही चलता, अब पास में बहुत आते तो बहुत होंगी सेवा करते, अब पास में कुछ है नहीं, तो जब एकादशी को वहां जाते थे पहुंचते थे तो क्या करे, पैदल तो जाते थे, किराया था नहीं, तो वहां जाते हुए जब नजीक आने लगा पंढरपुर, तो वहां से जंगल में से लकड़ियां चुन लेते थे, लकड़ियां लेकर के भाड़ा लेकर वो पहुंचते वहां, वो लकड़ियां बेच करके उनसे जो कुछ मिलता पैसा, उनसे अपनी रोटी आदि बनाने के लिए आटा और खरीद लेते, वो खरीद के चंद्रभागा के किनारे पर किसी ब्राह्मण को पेट या लेकर भोजन करा करते और द्वादशी का पारणा किया करते थे। तो एक दिन की बात है, ऐसे वो गए वहां पंढरपुर, लकड़ियां बेच करके उनसे कुछ चावल खरीदे, कुछ दाल। एक खरीदा, एक दो आदमी, तीन आदमी पास गए, दो आदमी पास गए, इतना सामान मिला, पैसे थोड़े ही थे। ऐसा को कुछ ब्राह्मण को देकर और बाद में अपनी रोटी बनाने लगे, अपनी रोटी बनाने लगे, वहां से छाना और इकट्ठा कर लिया और चंद्रबाग का किनारे रसोई बना रहे थे। तो भगवान बड़े विलक्षण है, वो इनकी लीला बड़ी विचित्र होती है। वे जब रसोई बनाने लगे तो एक ब्राह्मण आए, कहते भगत कुछ भोजन देगा? हाँ महाराज, हाँ भैया जो। तो रसोई की सब तैयारी करी उसने और कहा कि महाराज लो आप बना लो, बाटी बनेगी, आटा है, थोड़ा सा नमक है बस, और तो कुछ है नहीं, दाल बन जाएगी, घी तो है नहीं महाराज हमारे पास। क्यों, कोई बात नहीं भगत का, हम तो पा देते हैं, जैसा हो वैसा ही पा देते हैं। ठीक महाराज। इतने में महाराज जी मैया आ गई, वो कही वाह भगत का भोजन आप अकेले अकेले करते हो, क्या मेरा हिस्सा नहीं है? कि नहीं आप भी आओ। वो बच्चा मन को जो बड़े बड़े शरीर में सब में पड़ गए कि सामान तो एक आदमी जी में इतना थोड़ा घना अधिक हो जाए, अरे ये दो आ गए अब ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो ब्राह्मण जी कहा देखो रसोई मैं बनाती हूँ, आप बैठो, फिर भोजन करेंगे सब, भगत ही करेंगे, अपने ही करेंगे। वो रसोई बनाने को बैठ गई। मन को जी देखो क्या करेंगे, सामान तो थोड़ा है, एक आदमी काम चले जितना है, और ये ब्राह्मण ब्राह्मण दो ये आ गए, कह भी आ गए ना, तो कैसे कैसे भगत ही ठहरे। अब महाराज ब्राह्मण ने रसोई बनाई, रसोई बनाई तो ब्राह्मण ने भोजन करो। मन को जी ने कहा महाराज आप भोजन कर लो, वो बचा हुआ प्रसाद मैं ले लूंगा, जो बच जाएगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं आप भोजन करो। नहीं ऐसा नहीं होगा, देख भगत तेरे को साथ भोजन करना पड़ेगा, हम साथ में भोजन करेंगे। वो माता जी बोलेंगे नहीं तुम भोजन करो, मैं महाराज को आप तुम्हारे भोजन कराऊंगी फिर भोजन करूंगी। महाराज जगत जन नहीं परोसने लगी, जो महाराज वो तो इतना हो गया सभी भर पेट खा ले फिर भोजन बाकी बच गया। बोध गया जन देखो भी आज तो कोई ये संत है, ब्राह्मण कोई विचित्र है, इतना सामान जिसमें पा लिया, पाने पर भी फिर बच गया। और महाराज क्या बात है, प्रार्थना के मन से तो भगवान ने दर्शन दिए, दर्शन दिए तो चरणों में गिरा गया महाराज। यहाँ आज द्वादशी का दिन है, पंढरपुर में एकादशी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। द्वादशी के दिन बड़े बड़े ब्रह्म भोजन हुए, ब्राह्मणों के भोजन होते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया जाता है। तो इसमें आप आए, बाटी और दाल घी भी नहीं, थोड़ा नमक हो गया तो बोल लगा दिया, इतने पर आप आए। भगवान बोले कि मन को जी हमारे भोजन कराना कौन चाहता है, हमारे भोजन कराना नहीं चाहते, तुम्हारे मन में भोजन कराने के हम आ गए, भोजन मन कराना नहीं चाहते, नहीं चाहते। हाँ तो देखो उसके देखो वहां भोजन बनना है, उनके माल है, उसने जो कितना बढ़िया बढ़िया भोजन खीर और मालपुआ बहुत बड़ी बड़ी मिठाई यार बन रही है और ब्राह्मण भोजन हो रहा है। कहते हैं वो भोजन नहीं करने देते तुम हमारे साथ, तुम्हारा साथ साथ चल गए। वहां जाकर देखा तो वही बूढ़ा ब्राह्मण भीतर जाने लगा, ओ कागज कैसे जाते हो भीतर, पुर्जा है तुम्हारे पास? पुर्जा उर्जा हमारे पास नहीं है। तो क्यों जाते हो? भूख है, कुछ खा ले, भोजन मिल जाए, ऐसे नहीं भोजन मिलता है यहाँ पर, जितना निमंत्रण दिया है वही आ सकते हैं, आपको नहीं, आपको निमंत्रण दिया है, पूजा है आपके पास, लिखित है लाओ पूजा बताओ। तो पूजा नहीं, भूख है, भूख भूख इस तरह भोजन करेंगे नहीं नहीं। वो तो ब्राह्मण दस गए भीतर चले ही गए, चले ही जाते पकड़ा उसको कि कैसा आदमी है, और जागरण तो बैठ ही गए, बैठ गए तो आदमी का शेर के पास समझ पाए ऐसा एक ब्राह्मण आया है महाराज, वो मानता ही नहीं, जबरदस्त जाकर के और बैठ गया पंक्ति में, आदमी को भेजा पकड़ उसको बाहर निकाला, ऐसे बैठ जाए जबरदस्ती ऐसे भोजन थोड़ा ही है, आपको निमंत्रण दिया तो बताओ आप, फिर जलाओ फिर भोजन करो, ऐसे कैसे करते हो, यहाँ पर उठाकर बाहर गया, नहीं तो आप गए पुरुष को बुलाएगा आप पकड़ा देगा आपको, ऐसा करते हो जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। मन को जी बाहर देख रहे, देख मन को जी कौन भोजन कर रहा है, हमारे भोजन कौन कराता है, हमारे तुम्हारे जैसे भोजन कराते हर एक जगह हमारे को भोजन नहीं मिलता, निकाल दिया। पैसे महाराज जोर से चला, वायु और पसाई बरसा, सब तहस नहस हो गया कुछ देर। तो भगवान लीला विचित्र विचित्र करते, भगवान कहते मेरे को भक्तों का भोजन बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे कई भक्तों की कथाएं आती है, भोजन का मेवा चाहेगा साग बुजुर्ग घर खाए बोलो, बदलो की साग बीजन की रोटी भोग लगाया, वहाँ भोग लगाया, बड़े राजी होते हैं, राजा की बढ़िया बढ़िया था तैयारी, बहुत बढ़िया की थी रहने के लिए, दुशासन का महल पहले विचार कर दिया कि कृष्ण आते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर के, उनको कहाँ ठहरा है तो सजावट और सब दुशासन के महल में बड़े थे, उसमें ठहराओ उसमें ठहराओ। भगवान कहते हैं हम से नहीं ठहरेंगे भाई, कि भोजन करो, भोजन तुम्हारा नहीं करे, हम संधि का प्रस्ताव देकर आए हैं, अगर भोजन कर ले तो घूसखोरी हो जाती है, घूसखोरी होने से न्याय ठीक नहीं होता, हम तुम्हारा कुछ नहीं खाएंगे, हमारी बात मानो फिर देखा जाए कुछ, हम पहले भोजन नहीं करते हैं, नहीं किया भोजन हुआ तो भगवान ऐसी जगह भोजन नहीं करते, भगवान को तो महाराज सुदामा के चंडुल भगवान को इतने प्यारे लगे वो संकोच में भर गए। ब्राह्मणी ने सुदामा जी की ब्राह्मणी ने कहा कि आप जाओ, आपका मित्र है, बालक बने के साथ पढ़े हुए हो, जाओ मिल जाओ, बहुत बार कहा। ब्राह्मणी के मन में थी कि मिलने तो ऐसे ब्राह्मण को जरूर जाएंगे भगवान, क्योंकि दो तरह के पात्र होते हैं, एक सदाचारी सद्गुणी ब्राह्मण हो उसको वो पात्र होता है, एक अभावग्रस्त होता है जिनके पास में कुछ नहीं है, खाने पीने को ढंग पूरा नहीं, पहनने की कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पालन करने के लिए पूरा अन्न नहीं, ऐसे होते हैं तो ये दरिद्र होते हैं, भी पात्र होते हैं, और ब्राह्मण हो और फिर गरीब हो तो ये दुगुना पात्र, दुगुनी पात्र होता है, अभावग्रस्त होने से पात्र और सदाचारी सदगुणी सुदामा जी थे। तो ब्राह्मणी के मन में आप जाइए हो एक कहते मेरे को जाने में सर्व हासी है, हमारा वो मित्र है तो मित्रता है, वो कुछ लेने के लिए थोड़ी है, वो कहते मैं कब कहती हूँ तुम मांगो उसे, आप जाइए हो केवल आप मिल तो आओ अपने मित्र से, तो कई बार तंग करने से फिर अच्छा भाई मित्र से मिलेंगे तो कुछ भेंट लाओ, मित्र है उसे मिलने को जाएंगे तो कुछ भेंट लाओ, भेंट वो ब्राह्मण कहाँ से लाती, तो उसने क्या किया कि गरीब घरों में गई उनसे चावल ले आया, वो चिवड़ा होता है चिवड़ा, वो थोड़ा मांग कर ले आई, लो कैसे को बांध दो, अब बांधे गए कपड़ा नहीं, पुराना कपड़ा पड़ा था उसे आप चौथा चौथे करके उसे बांध करके पोटली दे दी, सुदामी जी ने वहां जार देखा, 16,108 रानिया और वो महल वो सुवर्णगढ़ बंद हो देखी सावजा तेरी द्वार का सोने की द्वार का ऐसा देखा वहां जो बड़ा अच्छा कराया कैसे बैठे। अब गणेश बुलाए दरबार ने कहा बड़ी कथा है, ज्यादा विस्तार नहीं करना है, भगवान ने महल में गया, दरबार ने आकर कहा महाराज एक ब्राह्मण आया है, पूछ रही दयालु को धाम बिसावत नाम आपनो नाम सुजामा, आपका धाम पूछा कृष्ण का घर कौन सा है, कृष्ण का घर ऐसे बड़ा ठीक ठाठा नाम कृष्ण सीधे सीधे कृष्ण का नाम घर कौन सा है ऐसा बोलता है। दरबार ने सुना दरबार दौड़ कर गया, महाराज ऐसा एक ब्राह्मण आया है, कहने वाला ब्राह्मण आ जाए नाम बताओ तो आपनो नाम सुदामा, सुदामा आया भगवान तो पहले से उतरी दौड़े, वो दरवाजे के भीतर गया, वो विजय साहब ने तो बीच में मिल गए बाखर में, अब मिले तो मर्याद मिले आपस में। सुना बात तुम कितना दिन कहाँ रहे, आए नहीं, अब आपस में मिल गए। उद्धव जी और कहते महाराज महल में पधारो, यहाँ क्या रास्ते में बीच में खड़े हो गए, सुनते ही नहीं महाराज, अब निमट गए। सुना बात भी हो गए, कहते सुना बात तुम फटी हुई धोती थी, एक चादर सी फटी हुई, पैरों में जूती भी फटी हुई, तो चल करके आए तो चलने में वह जूती होती फटी पीसी होती है, धूल उड़े तो पीठ तक धूल लग गई, जूतियां सुन करके और भी फरा भाई मिलते साहब। उस दिन क्या महाराज महल में पता हो, यहाँ क्या बीच में रह गए, फिर दोनों गए महल में। अब महाराज महल में बैठे पलंग पर बैठा, सुदामा को बैठाया, आप बैठे रहने लगी, महाराज इसने ब्याऊ फटे हुए और चरणों में जूती भी फटी हुई, धूल भरी हुई पीछे वो जूतियां से उसे उछल कर गए, और तुम आए नहीं। और कहा लो भाई आज हमारे मित्र सुदामा है, ब्राह्मण आए, लाओ जल इनका चल धो गए और अपने मेल में सुबह चल जाएगा, सब पवित्र हो जाए। ब्राह्मण के चरणों की सज्जी है, इसका महात्म तुम जानते नहीं हो। आठ पटरानी हमारा सोने का कलश ले रहा भरिया हुआ, सोने का आने लगे, लोटालो जल भगवान धरने लगे चरण, अब रानी चरण राजा की इतनी इतनी सुंदर सुंदर, इतना वेशभूषा, ऐसा गहना, ऐसा देखा सुदामा तो चकरा गए। अब वो धोया बैठाया और बोले कि बोलो सुदामा भाभी ने क्या भेजा, हमारी भौजाई ने भेजा, बनाओ देव हमारे को। सुदामा जी संकोच में पड़े, अब क्या देव है, अब ऐसे देवो साली को चिवड़ा दे में चावलों की कड़ी, तो देखा उसे खाक में क्या है, जो खेचा भगवान ने खेचा तो पुराना कपड़ा फट गया, फट गया तो कहा चावल बिखर गए, अब चावल बिखर गए तो चावलों को लेकर भगवान ने चापने लगे, जैसे अत्यंत भूखा और अन्न न मिले और उस अन्न मिल जाए वो खाओ, इस तरह से भगवान बड़ी भूख लगी खाने लगे, एक मुठ्ठी खाया, दूसरी मुठ्ठी खाया, तीसरे रात घर तो लक्ष्मी नाथ पकड़ गए, महाराज अकेले के लिए भगत की ये लेव की सौगात हमारे को नहीं दोगे, अब हम खाएंगे। महाराज एक लव और दो लोग का तो राज देगा, त्रिलू की दे दोगे तो कहाँ रहोगे आप। तो इसका कहना कि माता जी आप चिंता मत करो, पर तो भगवान ने दिया, सुदाम जी बड़े संकोच में करे, लाओ जल लाओ, अब रानियां जल लाने लगी, सा पैर धोने लगी और जल लाओ सब मैला में छिड़को, सब मैला हमारे पवित्र हो जाए। सुदाम ब्राह्मण की चरणों की रजी में बड़ा महत्व है, उस चक्रा गए महाराज, फिर भोजन बढ़ा, भोजन कर रहे सभी वही महाराज, रानियां पंखा कर रही है, भगवान भी खा रहे हैं, ऐसी सुदामा को भोजन कराया। एक दो दिन के बाद कहेगा इस हम तो जाएंगे भाई, हाँ महाराज पधारो, ब्राह्मण याद करती होगा, एक दो मेरे हो रहे आप चले लेंगे। कपड़ा ही नहीं बदला, वही फटे हुए कपड़े, वही फटी हुई जूती, वही फटे हुए पैर, वैसे ही सुधाम जी पैसा रवाना हो गया। रवाना हुआ तो मैंने विचार किए कि भगवान के समान कोई नहीं, कैसा प्यारा मित्र है हमारा, इतना भैगो ने कुछ दिया नहीं, वो समझता है कि ये ब्राह्मण कहीं माया में फंस जाएगा तो मेरे को भूल जाएगा, इस वास्ते भगवान ने दिया नहीं, बड़ी भारी भगवान ने कृपा करी है, जो कुछ नहीं दिया, पूछा ही नहीं, कपड़ा ही नहीं पूछा, कपड़ा ही नहीं बदला, वो भी नहीं दिया। ऐसे बड़े खुश होते, बड़े प्रसन्न थे, कई जगह चरित्रों में लिखते हैं जिसमें कहते हैं सुदामा ने पछताता हुआ, नहीं भागवत में आप देखो चरित्र, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता से जा रहे हैं, खूब खुश होकर जा रहे हैं, राजी होकर जा रहे हैं। ऐसे जाते जाते पहुंच गए वहां, जाल देखे तो महाराज अरे हम रास्ता भूल गए, क्या हुआ हमारी कुटिया से, यहाँ बड़े भारी महल जोगर बोझ वैभव वहाँ की कोई राजा आकर उतर गए या हमारी कुटिया तो गई है और किसी राजा ने कब्जा कर लिया जमीन पर भी। अब इस दृश्य सकरा हुए मंदिर देख डरे वो सुदामा मंदिर देख डरे डर गए वो कि क्या हो गए यहाँ पर। इसने महाराज ने ब्राह्मणी ने देखा, ब्राह्मणी ने देखा तो पूजा की सामग्री लेकर के सब श्रृंगार किया हुआ बढ़िया कपड़े कब्या कपड़े गहने पहरे हुए आरती लेकर सामने आरती आरती चरण अरे कौन कौन सूते हमारे महाराज आपके चरणों की दासी है जबान से पहचान पहचान फटे फटे कपड़े से बजाना बड़ी आरती करी भीतर ले गई। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है सब कुछ दे दिया पर सुधा में भी जो पोशाक वही अपनी घर की पोशाक वहां सब दास दासी चौकर बहुत ही बहुत थाट बाट जैसे अपनी द्वारिका है ऐसी सुधा में पूरी बना दी भगवान ने। भगवान की वह क्या देरी लगती कोई खर्चा लगता है ऐसी बना दी। तो भगवान देते हैं बड़े विशुद्धि से तो सुदामा को क्यों नहीं दिया सुदामा के रहने की इच्छा नहीं थी बिल्कुल त्याग था इस बात से मित्र से मिले ऐसी अवस्था में मैं नहीं जाऊँ सर्ववासी है ब्राह्मणी के जाओ तो मन में ब्राह्मणी के ही थी रहने की लेकर सुदामा बैठे मोह से वे तो संत की तरह दृढ़ से त्याग में ही मस्त बैठे हैं सब ऐसे भगवान देते भगवान की कृपा एक विलक्षण ढंग की होती है विचित्र ढंग की कृपा होती है दया होती है। तो भगवान के भगवान के भक्तों की बात दूसरा नहीं जानता कोई स्वार्थ मंत्र सकल जग माए सुपने ऊपर ऊपर परमार्थ नाए सुर नर मुनि सबकी अदिति स्वार्थ राग करे सुप्रीति हे तरह जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो भगवान में तो स्वतः है और भगवान के भक्तों में आ जाते हैं भगवान की कृपा से यही गुण आ जाते हैं उनमें तो वे भी मात्र जीवों का हित करने के लिए तुले रहते हैं। किस तरह से सबका हित हो सर्वभूत हित रहता गीता वगैरह संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति होते आत्मगम्य है सर्वत्र समम परिस्थिति हो सुगम हृदय दुखम सहयोगी परमो मत है वो परम योगी है जो सुख दुख अपने शरीर के समान दूसरों का समझता है दूसरा करता है ऐसी उनकी विलक्षण कृपा है भगवान की। तो सज्जनों कृपा और भगवान की सूर्यता प्रेम और कृपा दोनों ये दोनों होते वो सूर्य कहलाता है सूरज और कृपा नहीं वो आपस में मित्रता होती है वो मित्र होते हैं और मित्र उपकार करे न करे अपने तरफ से उपकार करते ही रहते हैं वो सूर्य होते हैं। तो सूर्य सर्वदेही नाम अरे भगवान सूर्य सर्वभूतान प्राणी मात्र के परम सूर्य है जो जितना दुख आता है सुख आता है उसमें भगवान की दया और कृपा रहती है। सुख में भगवान की दया होती है पिघल जाते भगवान से और दुख में कठोरता होती है। जैसे बालक के कोई फोड़ा फुंसी हो जाए वो ठीक नहीं होता तो डॉक्टर के पास ले जाती है वो देखता है बच्चा ही देखता डॉक्टर देख कर ठीक है वो कह भाई यहाँ तो सीधा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ठीक नहीं है मवाद निकलेगा सीधा लगाना ठीक होता है। तो माँ है हाथ पकड़ लेती बच्चा रोता है वो सीधा लगाना बालक रोता है उसको माँ जी अभी माँ है कसाई है कोई क्या क्रूर है ये कैसी कर रही है माँ। तो माँ का दुख कम नहीं होता है बालक के सीधा लगता है बालक रोता है तो क्या माँ का चित्त प्रसन्न होता है पर बालक की ये बीमारी दूर हो जाए इस बात से लेकर के और माँ इन्हें कठोर कर लेती है दुख तो होता है पर वो सह लेती है सभी इस तरह से मतलब संसार का दुख होता है तो उसको संत महात्मा सह लेते हैं। ठाकुर जी इलाज कर रहे हैं महाराज वो सीधा लगा रहे ऑपरेशन कर रहे हैं अब सीधा लगाने से कष्ट ही होता है वो सीधा लगाते हैं अरे अगाड़ी तो पीड़ा हो ही रही है फिर सीधा लगा रहे फिर सीधा कर दे उसमें कुछ दुख कम है क्या पहले पीड़ा कम हो रही है क्या जो फिर सीधा लगा के फिर पीड़ा बढ़ा दे तो पीड़ा बढ़ाने में नहीं होता है उसका पीड़ा दूर करने में होता है। इस तरह से भगवान है जो किया करते हैं इस बार गोस्वामी महाराज ने देख रहा है कि तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर ये कमसी में कमसी करे करे ढेर में ढेर अंधाधुंध सरकार है, ये अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो निशंक, भजन के मैं शंका मत करो, अंधाधुंध सरकार है। कोई न्याय नहीं अलग साहब है, अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो निशंक खींच दीनो परम पद्र दी दे दी निलंक। रावण गुरु क्रोध किया, उसको परम पद दे दिया, विभीषण राज्य लंका का राज दे दिया, वो कहा तो परम पद का लंका का राज। ये कोई न्याय होता खींच दी नो परम पद दी लंक, इस बात से अंधाधुंध सरकार है, कोई हिसाब नहीं है। तो भक्त लोग देखते ही नहीं कि भगवान क्या करते हैं कैसा करते हैं, उनके भीतर में एक दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान जो करते हैं वो ठीक करते हैं, हमारे लिए अच्छा करते हैं। ये एक विश्वास होता है, एक भाव होता है भीतर का, उसे भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। और महाराज भी कृपा के पात्र और स्वयं वैसे ही बन जाते हैं, भगवान के सही स्वभाव उनका हो जाता है। क्यों भगवान की उपासना करते हैं, जैसे उपासना करे उपासना हो जाता है। नृसिंह भगवान की पूजा करने वाले कई कई बाबा बड़े तेज होते हैं,